الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 5 سے معارف و مسائل ان آیات کے چل رہے ہیں. ان میں ہم نے آخری چیز جو پڑھی تھی وہ ایک واقعہ عجیبہ حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، یعنی بیٹے نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنے باپ کو بلاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ تم اپنا دعویٰ کر رہے ہو کسی کے خلاف، چاہے وہ تمہارا باپ ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو ہم نے تمہاری سائڈ آف دا سٹوری تو سن لی، لیکن جب تک دوسرے کی سائڈ آف دا سٹوری نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا، ایک قضاء کہتے ہیں فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے. تو جو قاضی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی کچھ کوئی دو پارٹیز ہوں یا کوئی دو افراد ہوں تو ان کے درمیان یہ فیصلہ کرے کہ اگر جھگڑا ہو جائے دونوں کے درمیان تو فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ صرف ایک سائڈ کی بات سن کر کے فیصلہ نہ کر دے بلکہ دوسرے سائڈ کی بھی بات سنیں، ٹھیک ہے. یا اگر وہ سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو کم از کم خود معلوم کرے، خود انویسٹیگیٹ کرے کہ دوسرے سائڈ کی سٹوری کیا ہے. ایک بہت ہی کار آمد اور فائدہ مند الحمدللہ اصول ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ فلانے شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ فلانے شخص نے تم نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، یعنی ایسا اس کو مارا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ پھٹ گئی یا خراب ہو گئی یا ضائع ہو گئی، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ واقعی اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کو ایسا زخم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دینا جب تک کہ تم دوسرے شخص کو بھی نہ دیکھ لو. جب تک کہ تم دوسرے شخص کو بھی نہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہوئی ہوں اور تمہارے سامنے یہ مظلوم بن کر کے آ گیا ہے کہ جی اس نے جو ہے نا وہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی، حالانکہ اس نے اس کی دو آنکھیں پھوڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ یہ تمہیں آ کر کے نہیں بتا رہا، وہ تو اس بات کو چھپا رہا ہے. اور تم اگر اس کی بات پہ یقین کر لو گے، اور بے شک تمہارے سامنے ایک دلیل موجود بھی ہے کہ ہاں بھائی اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، لیکن فیصلہ نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو ایسے موقع ملتے ہیں، ایسے سچویشنز آتی ہیں کہ جس کے اندر اس کو دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے تو اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، صبر اور تحمل کے ساتھ دونوں سائڈ کی بات سننی چاہیے، معلوم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ایون گھر کی جو عورت ہوتی ہے، گھر میں رہنے والی ایک ہاؤس وائف ہے، تو ایون اس کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، ठीक है, बच्चों के दरमियान कुछ हो गया तो एक बच्चे ने आकर के दूसरे के बारे में कहा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, उसने मुझे ऐसे मारा, उसने मुझे ऐसे धक्का दे दिया। ठीक है, तो अम्मी जो है वो फौरन से फैसला ना कर देगी, अच्छा तुमने ये क्यों किया ऐसा, अच्छा वो उसने ऐसा किया, चलो अब उसको हम पिटाई लगाएंगे, अब उसको हम सजा देंगे। ठीक है, तो बच्चों की लड़ाई में भी हो सकता है और खानदान वालों के दरमियान मामला में भी ऐसा हो सकता है कि एक खानदान वाली जो है वो आपको आकर के किसी दूसरे खानदान वाली के बारे में बता रही है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे जो है वो बेइज्जत कर दिया, उसने मुझे जलील कर दिया, उसने मुझे इज्जत नहीं दी और ये क्या वो क्या। ठीक है, और आप जो है वो उसकी बात सुन करके फैसला करते हैं, अपने जहन में एक एक इमेज बना लें किसी दूसरे के बारे में, हाँ भाई वो तो इतनी बुरी है, उसने तो वाकई ऐसी करती है, वो तो ये है, वो तो वो है। ठीक है, इमेज बना लिया, ये भी तो एक फैसला करना ही है ना, किसी दूसरे के बारे में आपने इमेज बना लिया कि हाँ वो तो खराब है। ठीक है, नहीं आपको क्या पता कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी तफसील क्या है। ठीक है, ये जो आपके सामने मजलूम बनी हुई है तो ये कितना आपको बता रही है और कितना आपको आपसे छुपा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये उसूल सबके समझ में आया होगा और उसको अपनी हकीकी जिंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से कहा कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक्त जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब उसका बाप आ जाए तो आप उससे पूछें कि वो कलिमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं, खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना। जब ये शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि उसका माल छीन लें? तो वालिद ने अर्ज किया कि आप उसी से ये सवाल फरमाएं कि मैं उसकी फूफी खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ, यानी मैं जो उससे माल लेता हूँ तो वो मैं किसी नाजायज काम के लिए तो नहीं ले रहा, उसके जो सगे रिश्तेदार हैं, ठीक है, जिनमें मैं खुद सबसे बड़ा उसका बाप हूँ और उसकी फूफी वो उसकी सगी रिश्तेदार है, यानी सिला रहमी के रिश्ते हैं ना, ये फूफी है खाला है, तो भाई इसके ऊपर तो खर्च करना उसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने उसका उसका ये जिम्मा लगाया है कि इनके ऊपर खर्च करें, तो मैं कोई नाजायज काम के लिए तो नहीं उससे ये पैसे छीन रहा कोई। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही, जिसका मतलब है कि बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। उसके बाद उसके वाले से दरियाफ्त किया कि वो कलिमात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हर मामले में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं, यानी जो बात किसी ने नहीं सुनी उसकी आपको इत्तला हो गई, जो कि एक मौजजा है। फिर इसने अर्ज किया कि ये एक हकीकत है कि मैंने चंद अशआर दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो हमें सुनाओ। उस वक्त उसने ये अशआरे ज़ेल सुनाए। अशआर क्या थे? गदौतुका मौलूद मौलूदन व मुंतुका याफ़ियन तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु, यानी मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारा सारा खाना पीना मेरी ही कमाई से था। ठीक है, यानी तुम अपनी कमाई की अब इतनी फिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी कमाई मैंने ले ली, भाई तुम्हारी तो सारी की सारी परवरिश मेरी कमाई से हुई है। इजा लैलतन वाफतु का बिस्सक्मे लम अबद, यानी जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई, बिस्सक्मे का इल्ला साहिरन अतमलमलू या तमलमलू, तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजारी, यानी तुम बीमार होते थे और तकलीफ जो है वो मैं अपने ऊपर ले रहा होता था, सारी रात जा करके बेकरार होता था तुम्हारे लिए। कअन्नी अनल मतरूकु दूनक बिल्लज़ी तुरिक्त बिही दूनी फ़ाइनी तहमलु, गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम शब रोता रहा, तुम बीमार होते थे और मैं रोता था तुम्हारी बीमारी के ऊपर, गोया कि मैं बीमार हूं जैसे। तखाफुर रदा नफ्सी अलैका व अन्नहा लतअलमु अन्न अलमौत वक्तुन मुअज्जलु, मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, पहले पीछे नहीं हो सकती। ठीक है, फलम्मा बलगत सिन्ना वलगायत अल्लती इलैहा मदा मा कुंतु फीका औ उअम्मिलु, कि मैं फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, यानी मैं अल्लाह से दुआएं करता था कि मेरे बेटे को ए अल्लाह जवानी की उम्र तक पहुंचा, उसको जो है वो उसको महफूज रख, उसको हिफाजत से तमाम शुरूर से बचा करके उसको एक अच्छी लंबी जिंदगी अता फरमा। तो मैं इसकी दुआ करता था कि तू इस उम्र को पहुंच, और जब तुम इस उम्र को पहुंच गए तो जालता जजाई गिल्दतन व फिवा व फिवादतन का अन्न का अंतल मुनाम अलमुतफ़िलु, कि तूने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया कि तुम्हें तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम कर रहे हो। ठीक है, जब तुम बड़े हो गए तो बजाय इसके कि तुम मेरे साथ नरमी का मामला करते, तुमने सख्त कलामी और सख्त गोई जो है वो मेरा बदला बना दिया। मुझे तुम ऐसे बदला दे रहे हो सख्ती करके मेरे ऊपर। फलैतका इज़लम तरा हक्का अबूत अबूती फ़अलता कमल जारुल मुसाक तिबा यफ़अलू, हे काश अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है। एक शरीफ पड़ोसी भी दूसरे की तकलीफ का एहसास किया करता है और उसके साथ ज्यादती नहीं करता, उसके साथ बदतमीजी नहीं करता। तो अगर तुम मुझे अपना बाप वाला मर्तबा नहीं भी देना चाहते थे तो कम से कम एक शरीफ पड़ोसी वाला मर्तबा तो दे देते। फअउलैतनी हक्कल जिवारी वलम तकुन अलैया बिमाली दूना मालका तबखलू, कि तूने कम से कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक में बुखल से काम ना लिया होता। यानी तेरे पास जो ये माल है ये वही माल तो है जो कि तूने मुझसे हासिल किया है, तो उसमें तुम मेरे ही लिए बुखल कर रहे हो, यानी इस माल को मेरे ऊपर खर्च करने में तुम्हें तकलीफ होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अशआर सुनने के बाद बेटे का गरेबान पकड़ लिया और फरमाया, अंता व मालुका ले अबीक, यानी जाओ तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। तो ये अशआर अरबी अदब की मशहूर किताब हमासा में भी नकल किए गए हैं, मगर उनको उमैया इब्ने अब सल्त शायर की तरफ मंसूब किया है, और बाज ने कहा कि ये अब्दुल आला के शेर हैं, बाज ने उनकी नस्बत अबुल अब्बास आमा की तरफ की है। ठीक है, यानी ये शेर जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी और शायर के कहे हुए थे, लेकिन इस शख्स के बाप को ये शेर याद थे और इसने दिली दिल में इनको पढ़ना शुरू कर दिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने आकर के खबर दे दी और आप से कहा कि उससे कहो कि वो शेर आपको सुनाए। तो मस्कूरा आयात में से आखिरी आयत, यानी ये पूरी जो बात हो रही थी वो माँ बाप के हकूक के ऊपर हो रही थी और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक जब वो खुसूसन बूढ़े हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को क्या कहा कि जाओ तुम भी और तुम्हारा माल सब का सब तुम्हारे बाप का है, तो तुम अपने बाप को अपना माल संभाल करने के ऊपर बुरा भला नहीं कह सकते हो। बहरहाल आगे चलते हैं, फरमाते हैं कि मजकूरा आयात में से आखिरी आयत, रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, यानी तुम्हारा रब ज्यादा जानता है तुम्हारे नफ्स में क्या है, तुम्हारे जी में क्या है, तुम्हारा रब उससे ज्यादा वाकिफ है। ठीक है, तो उसमें इस दिली तंगी को रफा फरमा दिया गया है जो वालिदैन के अदब व ताज़ीम के मुतअल्लिका अहकाम मस्कूरा से औलाद के दिल में पैदा हो सकती है, कि वालिदैन के साथ हर वक्त रहना है। ठीक है, यानी हमारे दीन का तो ये तसव्वुर नहीं है ना कि वालिदैन को जो है वो आप उठा करके किसी ओल्ड पीपल्स होम में या किसी हस्पताल में दाखिल कर दें। वालिदैन को तो कि तो औलाद ने खुद ही यानी तमाम जरूरियात पूरी करनी है और उनका उनका ख्याल करना है। ठीक है, जब वो बुढ़ापे में की हालत में आ जाएं, तो और जब यानी बुढ़ापे की हालत का मतलब ये है कि जब वो मोहताज हो जाएं, खुद से अपने कामकाज ना कर सकें, तो औलाद नहीं उनके सारे कामकाज करने हैं। तो जब उनके साथ इस तरह का मामला रखना है तो उनके और अपने हालात भी हर वक्त यकसा नहीं होते। किसी वक्त जुबान से कोई ऐसा कलमा निकल गया जो मस्कूर सदर आदाब के खिलाफ हो तो उस पर जहन्नम की वईद है। ठीक है, कभी होता है कि वालिदैन की जरूरत जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाती है, बहुत सख्ती हो जाती है उसके अंदर। तो उसमें तंग आकर के औलाद जो है वो कभी कोई बुरा कलमा जुबान से निकाल दे, अल्लाह ताला का तो हुक्म है ना कि उफ तक ना कहना, ठीक है। लेकिन अगर जुबान से ये उफ कलमा निकल गया, या ये कि उन्होंने कोई ऐसा बुरा भला बुरा भला कह दिया कि जिसके जवाब में कोई ऐसा कलमा निकल गया, ठीक है। क्योंकि जब इतनी बुजुर्गी को, इतने बुढ़ापे को कोई शख्स पहुंच जाता है ना, तो उससे फिर अपना गुस्सा काबू में नहीं रहता, और उसको सही मानों में सही तरीके से होश और हवास भी नहीं रहता। हमारे हमारे हजरत फरमाया करते हैं कि जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो तो हवा को भी गालियां निकाला करता है, हवा को भी, यानी हवा को, यानी एकदम ही एकदम, यानी नॉनसेंस किस्म की का गुस्सा करना, बिल्कुल नॉनसेंस, जिसकी कोई तुक नहीं बनती हो, कोई सेंस नहीं बनती हो ना, वो ऐसे मामले के ऊपर गुस्सा करता है, ठीक है। तो इसमें फिर औलाद से कभी कोई गलती कोताही की का एहतमाल है। तो फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा कलमा निकल गया जो मजकूर उस सदर आदाब के खिलाफ हो, तो उस पर जहन्नम की वईद है, इस तरह गुनाह से बचना सख्त मुश्किल होगा। इस आयत में इस शुबो और इससे दिली तंगी को दूर करने के लिए फरमाया कि बगैर इरादे बेअदबी के कभी किसी परेशानी या गफलत से कोई कलमा सादिर हो जाए और फिर उससे तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ हैं कि वो कलमा बेअदबी या ईज़ा के लिए नहीं कहा था। सन में सफर से वापसी हुई है कल, तो वो सफर में जरा तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो वो अभी तक चल रहा है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ हैं कि वो कलमा बेअदबी या ईज़ा के लिए नहीं कहा था। यानी एक होता है ना कि इंसान की जुबान से बिला इरादा यानी बतकाजाए बशरियत, है ना, इंसान बशर है, शर का मजमुआ है। बशर का मतलब क्या होता है? शर के साथ, ठीक है। तो इंसान के साथ जो है वो शैतान भी लगा हुआ है, वसवसे भी डालता रहता है, और उसके अपने अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। तो इसकी वजह से कभी उसके अंदर से ना बगैर इल्म इरादे के कोई गलत बात उसकी जुबान से निकल जाती है, या कोई गलत काम उससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने प्लान तो नहीं किया था, प्री प्लान उसके दिल में ये इरादा तो नहीं था कि मैं जो ना इनको अजियत दूंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा, मैं इनको अभी जो है ना वो यानी सख्त सुस्त कहूंगा, या कोई बहुत बुरा भला कुछ कहूंगा। तो पहले से कोई इरादा नहीं किया हुआ था इसका, ठीक है, कि मैं उनको तकलीफ पहुंचाऊंगा। तो ये बस बिला इरादा एक तबीयी रिस्पॉन्स के तौर पर ऐसा कलमा जुबान से निकल गया, तो ऐसी बात को अल्लाह ताला माफ फरमाने वाले हैं। लफ्ज अवाबीन बमाने तवाबीन है यहाँ पर, ठीक है, के फैन्नहु काना लिल अवाबीना गफूरा, कि बेशक वो अवाबीन के लिए गफूर है, माफ करने वाला है। तो यहाँ पे अवाबीन से क्या मुराद? अवाबीन से मुराद है तवाबीन, यानी तौबा करने वाले, वरना तौबा वरना अवाबीन जो है फरमाते हैं कि हदीस में बाद मगरिब की 6 रकात और इशराक की नवाफिल को सलातुल अवाबीन कहा गया है, जिसमें इशारा है कि इन नमाजों की तौफीक उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अवाबीन और तवाबीन हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह की तरफ पलटने वाले, ठीक है। गलती कोताही हो जाती है तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो उसके ऊपर जो है ना इसरार करने की बजाय कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था, इस वजह से मैंने उनको सख्ती से झड़क दिया, या इस वजह से मैंने उनके साथ ऐसा मामला किया, ये ना करे इंसान, ठीक है। ये होता है कि गुनाह तो करना, गुनाह करा, लेकिन फिर उस गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश करी, उस गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश करें ना कि हाँ भाई आई वॉज यानी मुझे हक बनता था कि मैं उनके साथ ऐसा मामला करूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा मामला किया था। ठीक है, तो ये हरगिज ना करें। गुनाह को जस्टिफाई करने से जो है ना, फिर क्या होता है कि इंसान फिर तौबा नहीं करता गुनाह से। ठीक है, गुनाह तो इंसान से हो जाता है, इंसान तो गुनाह गुनाह का यानी पर तो इंसान से तो गुनाह हो जाता है। ठीक है, तो जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, के सारे बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है ना, वो सब के सब खता करने वाले हैं, लेकिन बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो कि उनसे तौबा कर लेते हैं, अपनी खता से तौबा कर लेते हैं। तो गुनाह का हो जाना इतना बुरा नहीं है, नहीं होता, लेकिन गुनाह करने के बाद उसके ऊपर डट जाना और उसके ऊपर इसरार करना और उसकी कोई हुज्जत बनाना, कोई लॉजिक बनाना, ये असल बुरी चीज होती है। ठीक है, तो इससे जो है वो हमें इंतहाई ज्यादा बचने की जरूरत है। क्या लिखा? अच्छा जी, जजाकल्लाह। अच्छा, तो ये तो सूरह बनी इसराइल के अंदर जो हुकूक की बात शुरू हुई थी, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया और उसके बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया। उसके बाद जो आगे आयात आ रही हैं, दो आयात, तो उनमें फिर अल्लाह ताला कुछ दूसरे बंदों का भी हक बयान फरमा रहे हैं। तो उनको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, आप रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर दें और यहाँ पर हम म्यूट कर रहे हैं। وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا। पहले तर्जुमा पढ़ते हैं हम। وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, और दो कराबत वाले को उसका हक। कराबत वाले को कुर्ब कहते हैं, करीब, करीब का लफ्ज़। ठीक है, तो कराबत वाला जात जातल जल कुर्बा, कराबत वाला यानी जो करीबी रिश्तेदार है उसको उसका हक दो। वल मिस्कीना, और मिस्कीन को भी यानी मोहताज को, जो हाजतमंद है, हाजतमंद का हक अदा करना। ठीक है, उसकी तलकीन की। वबन सबीरे, और रास्ते के बेटे को। क्या मतलब रास्ता का बेटा? जब भी हमारे उस्ताद साहब इस तरह की कोई आयत पढ़ते थे ना, तो हमेशा पहले यही कहते थे, रास्ते का बेटा। तो रास्ते का बेटा किसको कहते हैं? मुसाफिर को कहते हैं, ट्रैवलर। ठीक है, जो कि रास्ते का होके रहा हुआ होता है। तो वह अपना सबील, वला तो बजर तबजीरा, और मत उड़ा बेजा, यानी तबजीर मत कर। ठीक है, यानी फजूल खर्ची मत करो। इन्नल मुबजरीना कानू इखवान शयातीन, बेशक जो मुबज़िर होते हैं यानी फजूल खर्ची करने वाले, वो तो शयातीन के भाई होते हैं। ठीक है, शयातीन कौन होते हैं? शयातीन वो होते हैं जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से बढ़ जाते हैं, हदूद क्रॉस कर जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, बेसिकली बगावत करने वाले। ठीक है, बगावत करना का मतलब क्या होता है? बगावत करने का मतलब ये होता है कि आप जो अथॉरिटी है, जो हुकूमत है, उसके खिलाफ कोई काम करें और फिर उसको जस्टिफाई करें, आप उसको जस्टिफाई करें और उसको हक समझ करके करें, उसको सही समझ करके करें, इसको बगावत कहते हैं। एक होता है कि आप किसी मुल्क में रहते हैं और आप उसकी जो लॉज है ना उनको मानते हैं, और कभी आपसे जो है वो कोई कानून टूट जाता है। ठीक है, आपसे जो है वो ज्यादती हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, लेकिन आप उसको गलती समझ करके रहते हैं या आप जो है वो माफी मांग लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, ये तो लॉ है ही गलत, ये तो लॉ होनी नहीं चाहिए थी, ये तो जुल्म है, ये जो अहकाम है ना, ये जो लॉज है हुकूमत के, ये तो जुल्म है, ये तो गलत है, और मैं तो इसको तोड़ूंगा, मुझे तो जहां मौका मिलेगा मैं कानून तोड़ूंगा, तो ऐसे शख्स को फिर बागी कहा जाता है, रेबल। ऐसे शख्स को रेबल कहा जाता है, बागी। ठीक है, तो शैतान की डेफिनेशन क्या है? शैतान की तारीफ जो है वो बगावत करने वाला। ठीक है, यानी अल्लाह के कवानीन को नहीं मानने वाला। ठीक है, तो जो फजूल खर्च इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको कितनी यानी बड़ी वईद सुनाई है कि ये तो शैतान का भाई है, हालांकि ये खुद शैतान नहीं है, ठीक है, ये खुद शैतान नहीं है, लेकिन फजूल खर्ची करके जो है ना, इसने यानी इतना बड़ा ऑफेंस किया है, इतना बड़ा इसने जो है वो जुर्म किया है कि अल्लाह ताला ने उसको शैतान का भाई करार दे दिया, ठीक है। वकान शैतान ले रब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का नाशुकरा है, नाशुकरा, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र ना अदा करने वाला, उसको नाशुकरा कहते हैं, उसी को जो है वो काफिर कहा जाता है, कफूर काफिर, यानी नेमत का कुफर, कुफरान नेमत करने वाला, शुक्र करने वाला नहीं बल्कि कुफरान नेमत करने वाला। तो हमें कैसे समझ आएगा कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं। फजूल खर्ची करने का मतलब क्या होता है? फजूल खर्ची करने का मतलब क्या होता है कि जहां पर जरूरत नहीं है खर्च करने की, वहां पे खर्च करना, ठीक है, उसको फजूल खर्ची कहते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां पे खर्च करना, ठीक है, या जितनी जरूरत नहीं है उतना खर्च करना। जरूरत तो थी आपको 1,000 रुपए खर्च करने की, ठीक है, लेकिन आप जो है वो 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फजूल खर्ची कहलाएगी। तो अब कैसे पता चले, तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी आप अगर बता दें क्या करना होगा इसके लिए कि फजूल खर्ची कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फजूल खर्ची की तारीफ पता चल गई, तो अब आप खुद थोड़ा सा जरा अपने जहन पर जोर डाल करके बताएं कि अब जब फजूल खर्ची की तारीफ पता चल गई, तो क्या मैं फजूल खर्ची कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक, ये आप जरा सोच करके जवाब दें इसका, जब तक हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो इन आयात के खुलासे तफसीर में हज़रत फरमाते हैं कि इन दोनों आयतों में हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक दो मजीद हुक्म मज़कूर हैं। अव्वल, वालदैन के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के हुकूक, दूसरे खर्च करने में फजूल खर्ची की ममानियात, ठीक है। मुख्तसर तफसीर ये है, और कराबत दार को उसका हक माल व गैर माली व गैर माली देते रहना, कराबत दार को उसका हक देते रहना, तो कौन से वाले हक होते हैं? माली हक भी होते हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो माल खर्च करना चाहिए वो भी उसका हक है, और जो माल के अलावा हुकूक होते हैं यानी उनके साथ अदब तमीज के साथ रहना, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, तो माली और गैर माली हुकूक अपने कराबत दारों को देते रहना, और मोहताज और मुसाफिर को भी उनके हुकूक देते रहना, ठीक है, मोहताज और मुसाफिर को, और माल को बेमौका मत उड़ाना, बेमौका माल को मत उड़ाना, बेशक बेमौका माल उड़ाने वाले शैतान के भाई बंद हैं। यहाँ पर मौके का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वही वही लफ्ज जो है वो हम जरूरत का लफ्ज भी उसी के लिए इस्तेमाल करते, ठीक है, तो बिला जरूरत इस्तेमाल करना माल को खर्च करना, तो जो बिला जरूरत माल को खर्च करते हैं वो शैतान के भाई बंद है यानी उसके मुशाबे होते हैं। भाई बंद होने का मतलब कि उसके मुशाबे होते हैं यानी वो इस मामले में वही काम कर रहे हैं जो कि शैतान करता है, ठीक है, अगरचे कि वो पूरे के पूरे शैतान नहीं है, वो हर चीज में शैतान की मुशाबियत नहीं रखते, लेकिन इस मामले में वो शैतान की मुशाबियत रख रहे हैं, और शैतान तो अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र है कि हक ताला ने उसको दौलत अकल की दी, उसने उस दौलत अकल को अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च किया। इस तरह फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह ताला ने दौलत माल की दी, मगर वो उसको अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च करते हैं, ठीक है, यानी शैतान को अल्लाह ताला ने माल की दौलत नहीं दी, ठीक है, माल की दौलत जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, जिन्नों को नहीं दी है, ठीक है। तो आपने फिर क्या जवाब लिखा है इसका, जो आपसे पूछा था कि जी अब क्या करना चाहिए, तो तो इसका उन्होंने लिखा है कि जो सामान लेते हैं सब जरूरी लगती है, सब जरूरत लगती है, ठीक है, जो भी आप सामान खरीदते हैं वो सब जरूरत लगता है। बहरहाल तो सवाल का जवाब तो नहीं दिया है, और किसी ने भी नहीं दिया। पहले ये जानना होगा कि मुझे कहाँ कितना खर्च करने की जरूरत है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये जवाब है कि फजूल खर्ची से बचने के लिए हमें अपनी जरूरत को डिफाइन करना होगा, जरूरत की तारीफ करनी होगी, ठीक है, कि मेरी क्या जरूरत है, ठीक है, और जब जरूरत आपको पता चल गई तो फिर आप वहां पे खर्च करेंगे, वो फजूल खर्ची नहीं होगी। और जो चीज जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर अगर खर्च कर रहे हैं तो फिर वो फजूल खर्ची हो गई, ठीक है। अब मसला सारा का सारा ये आता है कि ये तो चले कॉमन सेंस वाली बात थी, ठीक है, बहुत ही आम सी बात है कि भाई जरूरत डिफाइन करेंगे तभी पता चलेगा ना कि जरूरत पे खर्च कर रही हूँ कि जरूरत पे खर्च नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज मेरी जरूरत है, क्या चीज मेरी जरूरत है और क्या चीज मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये है असल सवाल मेरी इसलिए। और ये सवाल असल भी है और ये सवाल जो है वो इंतहाई अहम तरीन सवाल है। क्यों? इसलिए कि हर इंसान की जरूरत मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की जरूरत मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसान की जरूरत से, ठीक है। और वो क्यों मुख्तलिफ होती है? उसकी वजह ये होती है कि हर इंसान के हालात को अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान के हालात से मुख्तलिफ बनाया, यूनिक बनाया। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान एक बिल्कुल अछूता किस्म की अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है। तो जब वो दूसरों से मुख्तलिफ है, उसके हालात दूसरों से मुख्तलिफ हैं, तो उसकी जरूरियात भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। दो दो इंसानों की जरूरियात सेम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सेहतमंद है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई आरजा नहीं है, ठीक है। तो क्या ख्याल है आपका, क्या उसकी जरूरियात और एक बीमार इंसान की जरूरियात ये बराबर हो सकती है? नहीं, बीमार इंसान की अलग जरूरियात है, बीमार इंसान को जो है वो दवाइयों की जरूरत है, बीमार इंसान को जो है वो अस्पताल जाने की जरूरत है ना, कोई सफर करके अस्पताल जाएगा ना, उसको कोई गाड़ी का किराया उसको चाहिए होगा, कोई उसको गाड़ी चाहिए होगी, कोई उसको या ड्राइवर चाहिए होगा जिसके ऊपर बैठ कर, जिसकी गाड़ी में बैठ करके वो अस्पताल जा सके, ठीक है। तो उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे जो कि किसी सेहतमंद इंसान को नहीं चाहिए होंगे, राइट। अच्छा, पैसे, ये तो पैसों की बात हो गई कि एक बीमार इंसान को जो है वो दवाइयों के लिए और इलाज मुआवजे के लिए और डॉक्टर विजिट के लिए उसको पैसे चाहिए, सेहतमंद इंसान की ये जरूरत नहीं है। उसी तरीके से वक्त, सेहतमंद इंसान को अपने 24 घंटों में से डॉक्टर विजिट के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो बीमार नहीं है। लेकिन जो बीमार है तो उसको सिर्फ पैसे नहीं निकालने की जरूरत है, उसको वक्त भी निकालने की जरूरत है। तो कितना फर्क हो गया एक बीमार इंसान में और सेहतमंद इंसान में। उसी तरह से एक 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 औरत है, उसकी अलग जरूरियात है, राइट। औरतों को आप सारी की सारी माशाल्लाह पता है कि हमारी हमारी क्या जरूरियात हैं। क्या आपकी जरूरियात और मर्दों की जरूरियात बराबर है? नहीं, बहुत फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? भाई वो मर्द है, आप औरत हैं, हालांकि दोनों की उम्र बराबर होगी, दोनों एक ही घर में रहते होंगे, है ना। हो सकता है दोनों के माँ बाप भी एक ही हो, भाई बहन है तो माँ बाप भी एक ही है, भाई का के माँ बाप भी वही है, बहन के माँ बाप भी वही है, लेकिन बहन की जरूरियात मुख्तलिफ है, भाई की जरूरियात मुख्तलिफ है, राइट। तो ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? ये सब आपको इस उसूल को समझाने के लिए बता रहे हैं कि हर इंसान की जरूरियात मुख्तलिफ है, ठीक है ना। उसी तरीके से हर जमाने की जरूरियात मुख्तलिफ होती है। एक इंसान जो है वो आज से 100 साल पहले रहता था, ठीक है, तो उस 100 साल पहले के जो हालात थे उसके अंदर इंसानों की जरूरियात मुख्तलिफ हुआ करती थी, और 100 साल बाद जो इंसान रहते हैं आज के दौर में जो रहते हैं उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, ठीक है। उसी तरीके से जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग रहते हैं तो उनकी भी जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं। पाकिस्तान में रहने वाले की जरूरियात मुख्तलिफ होंगी, सऊदी अरब में रहने वाले की जरूरियात मुख्तलिफ होंगी, क्या ख्याल है? एक हो सकती है अमेरिका में रहने वाली की जरूरियात और किसी यानी पाकिस्तान में इंडिया में रहने वाले की जरूरियात सेम हो सकती है? नहीं, सेम नहीं हो सकती, ये मुख्तलिफ जरूरियात है, ठीक है ना। वहां पे उसको अलग इल्म की जरूरत है। इल्म इल्म भी तो एक एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है ना। तो आपको अपने इलाके, अपने माहौल मुआशरे में जिस इल्म की जरूरत है, उस माहौल मुआशरे के अंदर अपने काम करने के लिए, तो वो जरूरत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर आपको उर्दू जुबान की जरूरत है। एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ऐसा है नहीं उर्दू जुबान की जरूरत, लेकिन भाई वो उर्दू बोलने वाला मुआशरा है, तो वहां पर उर्दू जुबान आना ये इंसान की जरूरत है। जबकि अमेरिका में जो रह रहा है तो उसको अंग्रेजी जुबान आना ये उसकी जरूरत है। फर्क है कि नहीं है? जुबानों की जरूरत फर्क हो गई, ठीक है ना। तो इतना ये जरूरत वाला जो मामला है, तो हाउ टू डिफाइन योर जरूरत, ये कितना ज्यादा तफसीली मामला है, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, ठीक है। तो ये जो फजूल खर्ची अल्लाह ताला ने जो फरमा दी है ना, इसकी कितनी तफसील है इसके अंदर कि फजूल खर्ची मत करो, और फजूल खर्ची करने वाले जो है वो शैतान के भाई हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, मेरी क्या जरूरत है और क्या मेरी जरूरत नहीं है। तो इस मामले में जो है ना, वो हम बहुत ज्यादा कोताही करते हैं। हम अपनी जरूरियात जो है ना, वो हम समझते नहीं है कि हमारी क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने लिए हम फैसला ये करते हैं कि जी मुझे हर चीज की जरूरत है, ठीक है ना। मुझे जो है ना वो सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे जो है ना वो कोई बातचीत करने वाला भी चाहिए। तो कहते हैं कि जी हमारी इमोशनल नीड्स है, इमोशनल नीड्स, ठीक है ना। फिर हमारी जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिर हमारी जो है वो दूसरे आराम वाराम की नीड्स है, ठीक है ना। तो हम अपने लिए जो है ना वो बहुत सारी चीजों को अपनी जरूरत करार दे देते हैं, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं, तुम्हें तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें खाना मिल तो रहा है, तुम्हें पानी मिल तो रहा है, बस तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है, अब चुप करके बैठो आराम से रहो, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम जो है वो बाहर जाया करो, तुम जो है वो फलाने से बात किया करो, तुम जो है वो फलाना काम किया करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन अपनी बारी आती है तो हम ऐसी चीजों को भी अपनी जरूरत करार दे देते हैं जो कि शायद हमारी जरूरत नहीं थी, और जहां दूसरे की बारी आती है वहां पर जो उनकी उसकी जरूरत थी वो भी हम उसकी जरूरत यानी मानने से इनकार कर देते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। तो ये यानी एक बड़ा अहम नुक्ता है ये हमारी जिंदगी का। अच्छा, शादीशुदा औरत पे ससुराल वालों का हक ज्यादा है या उसके वालिदैन का हक ज्यादा है? ये तो आप उसका जवाब दे दें, आप पता है ना। अच्छा, ससुराल वालों का हक ज्यादा है, शादीशुदा औरत के ऊपर उसके उसके शौहर का हक ज्यादा है, ठीक है। ससुराल वालों का हक ससुराल वालों का हक ज्यादा नहीं है, उसके शौहर का हक ज्यादा है, ठीक है। और शौहर के बाद जो है फिर उसके वालदैन का हक है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब शौहर का हक अदा करने के लिए ससुराल वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। वही अगर आप ससुराल वालों को साइड पे रखेंगे और यानी बेसिकली शौहर का हक ज्यादा का मतलब ये होता है कि वो अपने शौहर को राजी रखे, ठीक है, शौहर को खुश रखे, शौहर का को रेस्पेक्ट दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप शौहर को तो उस रेस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसके जो है ना माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। तो शौहर के माँ बाप को रेस्पेक्ट अगर आप नहीं देंगे तो शौहर जो है ना वो डिसरेस्पेक्टेड ही फील करेगा, वो डिसरेस्पेक्टेड ही फील करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिल वास्ता शौहर के वास्ते से फिर शौहर के माँ बाप का हक जो है ना वो बढ़ जाता है उसके, ठीक है। बहरहाल तो उसूली बात तो ये है, यानी बिल्कुल जो क्या कहते हैं मैथमेटिकल, अगर आपका सवाल का जवाब दिया जाए तो मैथमेटिकल जवाब सिर्फ उसका यही है कि शौहर का सबसे ज्यादा है और उसके बाद फिर इसके अपने सगे वालदैन का हक ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लाइफ इज नॉट मैथमेटिकल, ठीक है ना। लाइफ के अंदर तो फिर आपको यानी कंक्लूसिव्स निकालने पड़ते हैं कि जी इसका यानी इसका जो है वो असर किसी और चीज़ पे पड़ रहा है, उसका असर किसी और चीज़ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर आपको देखना पड़ता है। अच्छा, क्लास का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, तो इस वजह से मजीद जो डिस्कशन है इसके ऊपर फिर वो हम अगली क्लास में करेंगे। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।